लास्ट संडे मैंने आपके साथ प्रचार किया था लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चर्च, कि कलीसिया के अगुओं की क्या जिम्मेदारी है। और उससे पहले भी हमने पहले तीमुथियुस को क्रम से पूरे अध्याय को हमने देखा था, 6 अध्याय में किस प्रकार से पौलुस कलीसिया को लिख रहा है कि अगुओं का उत्तरदायित्व क्या है और कलीसिया किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। और उसी क्रम में आज, जैसे मैंने कहा था, आज हम देखना चाहते हैं कि जो हम विश्वासी कलीसिया है, कैसे हम साथ मिलकर बढ़ सकते हैं और कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को अगुओं के प्रति पूरा कर सकते हैं। ये एक संबंध है, ये एक रिलेशनशिप है, बोथ वे, दोनों तरफ से। ना केवल उनकी जिम्मेदारी है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है, हम किस प्रकार से साथ मिलकर के कलीसिया को और मजबूत बना सकते हैं और दिन बढ़ा सकते हैं और अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकते हैं। सो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ कृपया निकाल लीजिए 1 थिस्सलुनीकियों। हमने 1 थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय को पढ़ा था, लेकिन 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 12 पद से लेकर के 22 पद तक खास उसे हम आज विचार करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च मेंबर्स टूवर्ड्स लीडर एंड एल्डर्स। सो आज ये वाला विषय है और यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 से 22 तक। परंतु भाइयों, हम तुमसे निवेदन करते हैं, उनका आदर करो जो तुम्हारे मध्य कठिन परिश्रम करते हैं और जो प्रभु में तुम्हारे ऊपर नियुक्त किए हैं तथा तुम्हें शिक्षा देते हैं, और उनके कार्य के कारण प्रेम पूर्वक उनका अत्यंत धन्यवाद सम्मान करो। एक दूसरे से मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि आलसियों को चेतावनी दो, कायरों को प्रोत्साहन दो, निर्बलों को की सहायता करो, सबके साथ सहनशीलता दिखाओ। ध्यान रखो कि कोई बुराई के बदले किसी भी बुराई ना करे, परंतु सर्वदा एक दूसरे की तथा सब लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहो। सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को सावधानी से परखो। सब बातों को सावधानी से परखो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आज के वर्तमान समय में जो अच्छी है उसे दृढ़तापूर्वक थामे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सो पौलुस का एक बोझ है, पौलुस का एक कंसर्न है। वो कलीसिया अब उसका ड्रीम बन चुका है। मैं बार बार बोलता हूं, कलीसिया जो है वो परमेश्वर की पूर्वकालीन योजना है। इससे पहले संसार की सृष्टि होती परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर जानता था कि मैं सृष्टि करूंगा और सृष्टि का क्या होगा, वो जानता था कैसे पाप आएगा, कैसे मैं उसका निवारण करूंगा, किस प्रकार से मैं अपनी कलीसिया को बुलाऊंगा और पुनः मैं उस कलीसिया को महिमित करूंगा और पुनः जो बिगड़ गया है उसको महिमा में अपने पूरे स्थान पे बनाकर ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर जानता था। और कलीसिया न केवल उसकी पूर्वकालीन योजना है, लेकिन कलीसिया उसका स्वप्न है, उसका ड्रीम है, कलीसिया उसका दर्शन है। और इसीलिए जब हम सुसमाचार में आते हैं कि कलीसिया अभी स्थापित नहीं हुई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में बहुत स्पष्ट बात करते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मत्ती 16 अध्याय में कलीसिया का आधार कन्फेशन, विश्वास है। यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है, वो मसीह है जो पत्रस ने अंगीकार किया। 17 अध्याय में यीशु मसीह कलीसिया की नींव है, ना व्यवस्था ना भविष्यता। एक और भविष्यता है, एक और मूसा है, एक और एलिया है। मूसा व्यवस्था का प्रतीक है, एलिया भविष्यता का प्रतीक है, बीच में प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया यीशु मसीह ने स्थापित की और उसकी महिमा है। और तब उसके बाद हम 18 अध्याय मत्ती 18 अध्याय में देते हैं कलीसिया का अनुशासन, और तब वहां प्रभु यीशु मसीह एक अनुशासन की बात करते हैं कलीसिया के प्रति। So, 3 अध्याय मत्ती में बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में कहे, और वही दर्शन परमेश्वर ने पौलुस के अंदर डाल दिया था। मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया, उसको बुलाहट दी, वही चीज के अंदर कूट कूट के भर गया था। और ये ड्रीम है और ये सच है। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कलीसिया हमारे दर्शन में, हमारा दर्शन कलीसिया है और परमेश्वर इस कलीसिया को मजबूती से देखना चाहता है। कलीसिया केवल मेंबरशिप लेना कलीसिया नहीं है, चर्च में आ जाना कलीसिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मसीह के रूप में और मसीह के वचन में बढ़ना, यह कलीसिया का काम मुख्य कार्य है। सो जरूर परमेश्वर ने कलीसिया में सेवकों को रखा है। सेवक भी आपके समान है, उनका भी न्याय होगा, वो भी आपके समान निर्बल हैं। लेकिन जिस प्रकार से परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, माता पिता बच्चों को संभालते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता के बराबर होती है और बढ़ते जाते हैं और अलग परिवार बनता चला जाता है, ठीक इसी प्रकार से। सो न केवल सेवकों की जिम्मेदारी, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को देखना है। और इसलिए पौलुस बार बार उन बातों को सिखाता है, अपनी सेवा के द्वारा उदाहरण देता है। थिस्सलुनीकी पत्री एक ऐसी पत्री है जहां पौलुस की सेवा के बारे में बहुत कुछ है, जिस प्रकार से जो हमने दूसरे अध्याय को पढ़ा किस प्रकार से उसने सेवा की और उसके बारे में वर्णन है। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो इन पदों को हम तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहली चीज, पिछली बार हमने देखा था झूठी शिक्षा से सावधान रहना, संपन्नता से के सुसमाचार से सावधान रहना, व्यर्थ अधिकार की अधिकार को जताने से सावधान रहना और सेवा को कमाई का साधन बनाने से सावधान रहना। ये एल्डर्स के बारे में, लीडर्स के बारे में देखा था। लीडर्स झूठी शिक्षा ना दें, सच्चा सुसमाचार दें, संपन्नता के प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल से बच कर रहे। ये बहुत लोगों को मस्तिष्क को खराब कर रहा है। साधनों, ओ विश्वास कर लो चंगाई मिल जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये कर लोगे वो कर लोगे, 100 रुपए दोगे तो 1000 रुपए मिलेगा। ये गलत है। इन शिक्षाओं से हमें सावधान रहना है, परमेश्वर का वचन को गंभीरता से समझना है, व्यर्थ के अधिकार को जताने से, अगवे किसी प्रकार से कलीसिया के सदस्य पर जबरदस्ती अधिकार ना जताएं, तुम्हें मेरी बात माननी है। मैं और कई बार लोग अगुओं को देवता बना लेते हैं, यह भी सावधान रहना है। कई बार लोगों को अगु के वही जो कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि वही सच्ची बात बताएंगे। हमें सावधान रहना है, सचेत होना है। सेवा को अगुओं को कमाई का साधन नहीं मनाना। कई सारी कलीसिया हैं, क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कलीसिया, वो दान आ रहा है, ना कोई उसका हिसाब है, ना कुछ है, अपने जेब में रख रहे हैं। ये गलत है। इसलिए मैंने कहा कि इस कलीसिया में जब से जिस दिन से शुरू हुई है एक ही चीज का पूरा पूरा, ना कल यहाँ बाराबंकी 40 साल 42 साल पहले कलीसिया शुरू हुई, वहां पर जाएंगे वहां पर भी जितनी जाइन की कलीसिया हैं सबका एक ही सिस्टम है। और पूरे पहले दिन से इन सारी बातों को हम सिखाते चले आए हैं इस पिछले 40-42 साल से, और परमेश्वर का धन्यवाद हो वो कर रहा है। और जब आज हम देखना चाहते हैं तो कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी क्या है, तीन बातें। कलीसिया के अगुओं के साथ संबंध, पहली बात 5:12-13 तक। दूसरी बात, कलीसिया में एक दूसरे के साथ संबंध, 5:14-17 तक। दूसरी बात, तीसरी बात, कलीसिया में पवित्र आत्मा के साथ संबंध, 18-22 तक। ये तीन बातों को हम देखना चाहेंगे। पहले कलीसिया में अगुओं के साथ संबंध जो 12-13 पद है, किस प्रकार से व्यवहार करना है। जब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ लिखा 12-13 पद में, परंतु भाइयों हम तुमसे निवेदन करते हैं कि उनका आदर करो जो तुम्हारे मध्य कठिन परिश्रम करते हैं, जो प्रभु में तुम्हारे ऊपर नियुक्त हैं तथा तुम्हें शिक्षा देते हैं, और उनके कार्य कारण प्रेम पूर्वक उनका अत्यंत सम्मान करो, एक दूसरे साथ मेल मिलाप से रहो, प्रेम पूर्वक एक दूसरे से। तो तीन बातें हैं, अधीनता का स्वीकार करना है, सम्मान करना है, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना है, उनका सम्मान करना है, उनके अधीनता में रहना है और उनकी शिक्षा को ग्रहण करना है। जरूर सही बात को जानते हुए, ये मतलब नहीं जो भी शिक्षा दी जा रही है हम स्वीकार करें, समझना है शिक्षा। ये पुलपिट एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही पवित्र स्थान है, और जो यहाँ खड़ा के वचन की सेवा करता है, परमेश्वर का वचन याकूब में कहता है कि उसका न्याय और भी अधिक गंभीरता से किया जाएगा। सो हमें खतरा है, हम इस पुलपिट को मिसयूज नहीं करते, वचन को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं करते, और जितना ऐसा करते हैं वो परमेश्वर की ओर से दंड पाएंगे, और इसलिए मेहरबान से हमें सावधान रहना है। सो पहली बात, क्या मतलब है आदर करने का, कौन किन के लिए, जो तुम्हारे मध्य में कठिन परिश्रम करते हैं, जिनको तुम्हारी आत्माओं की चिंता है, जिनको तुम्हारे आत्मिक जीवन में बढ़ने की चिंता है, जिनको तुम्हारी परिस्थितियों में खड़े होने की चिंता है, कोई भी परिस्थिति हो कोई बात हो, और उसमें खड़े होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, विजिट करने के लिए, हर चीज में साथ देने के लिए। अब आप चोरी करेंगे तो उसमें साथ करने की बात नहीं है, समझना है जो चीजें आपके जीवन की आत्मिक बढ़ाई के लिए, आपने पड़ोसी से लड़ाई कर ली और तब फोन कर रहे हैं, भैया भैया मुझे आइए, मेरे पड़ोसी मुझे मार रहा है और आप मुझे बचा लीजिए। ये नहीं है, सावधान रहना, बहुत सावधान रहना है हमें किसी से। लेकिन जो तुम्हारे बीच में तुम्हारी चिंता करते, कठिन प्रश्न, सच शिक्षा देते हैं और जब विजिटिंग में भी आते हैं तो उनका विजिटिंग का उद्देश्य क्या है? मैं अपने भाइयों को बार बार इस बात को बोलता हूं, हमारे किसी भी विजिटिंग को जाने का क्या उद्देश्य है? क्या वो परिवार आत्मिक रीति से बढ़ रहा है? हमारी एक आप उनके साथ अपनी आत्मिक समस्याओं को बांट सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी वो आपकी काउंसलिंग करें, उनकी जिम्मेदारी वो आपको सिखाएं, उनकी जिम्मेदारी आपको प्रार्थना करें, अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें आपकी सहायता करनी है, करने के लिए दो कदम करें, उनको आपके साथ अस्पताल जाना अस्पताल जा सकते हैं, कोई और मदद करें मदद कर सकते हैं। अभी कुछ बहनें जिन्होंने जिनकी कुछ प्रॉब्लम है उन्होंने आके मुझसे शेयर करा, मैंने दूसरे भाई से मिलाया और मैंने कहा कुछ लीगल प्रॉब्लम है, हमने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, आप परेशान हो जाइए, है ना। हमारे बीच में एक बहन है, वो आती बेचारी बहुत गरीब है, उसके बेटे को अरेस्ट करके झूठा दोष लगा के उसको बंद कर दिया कि वो अफीम बेच रहा था, पुलिस वालों ने थमा दी और दूसरे लोग तो चले गए, उसको पकड़ा दिया। वो बहन गरीब बहन आती है यहाँ पर, कहाँ पर वो पीछे बैठी है, उसके लिए प्रार्थना करें। और हमने पिछले हफ्ते एक वकील को बुलाया, वकील से बातचीत करी और इनको मिलवाया और उस वकील को एक काम दिया ताकि गवर्नमेंट के थ्रू करके उसको वो छुड़ा सके। प्रार्थना करें कि बच्चा जेल से रिहा हो जाए। ये कलीसिया के अंगों की जिम्मेदारी है, इस तरह से हमें खड़े होना ये अंगों। और आप भी अपनी रियल प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हैं, बीमार हैं आप जरूर इन्फॉर्म करिए, हम प्रार्थना करेंगे, विजिट करेंगे, कभी हो सकता है मुश्किल तो अगर तो नहीं आ पाएंगे दूसरे को भेजेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे अभी बहना नहीं था, पिछले दिनों में जैसे हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ा, बच्चों के साथ कुछ समस्या आई, चर्च के बाद खबर मिली, हमने तुरंत दो तीन भाइयों से कहा, तुरंत भाई लोग जाने के लिए तैयार थे क्योंकि मुझे कहीं और जाना था, पर हम ये है। और इसलिए जो आपके बीच में इस प्रकार सेवक रहे आपको देखना है, ये समर्पण करना एक आसान है लेकिन जिम्मेदारी को लेकर चलना कठिन है और उसके प्रति हमें परमेश्वर सामने उत्तरदायित्व होना। सो जब आप इस बात को देखते हैं तो जो आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका आपको उनको सम्मान करना, सम्मान करने मतलब क्या है, पांव छूने से मतलब नहीं, आपकी बातचीत, आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी बातें उनके साथ ऐसे होनी चाहिए कि आप उनको सम्मान दे रहे हैं। बहुत ऊंचे स्थान पर बैठाना नहीं, हमारा व्यवहार अच्छा उनके साथ होना चाहिए, हमारा स्वभाव, हमारी बातचीत अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए हम कलीसिया में तू तड़ाके की बात को कभी इनकरेज नहीं करते, बातचीत करने का तरीका भी हमारा है। सो हमें सम्मान करना है, ना केवल सम्मान करना है लेकिन वो कहता है हमें उनकी उनकी शिक्षा को भी ग्रहण करना है, क्योंकि जब आप आते हैं आपको वचन की शिक्षा दी जाती है, अरे ठीक है इनको देना था दे के चले गए, नहीं 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 नहीं, गंभीर होकर सोचना है, विचारना है, उसको अपनाना है, वो आपके जीवन की अगुवाई करेगा। ये भाई लोग जहाँ अभी होकर आए हैं, वो भाई आज सेवा कर रहा है, 13 साल हमारे साथ रहा और हम प्रभु की दया से उसको तैयार करा और आज प्रभु की सेवा में बहुत जगह वो है, ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेवा में जब आप कलीसिया में परिवार में अगर बच्चे माता पिता का सम्मान ना करें क्या होगा उसका, उनकी ना माने। हाँ माता पिता को भी व्यवहार सही करना है, हर एक किस प्रकार से दोनों से, लेकिन माता पिता समझदार हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ करने तैयार रहते हैं, त्याग करने तैयार रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चे माता पिता की चीज जो मन में आए वो करेंगे, ये गलत है। और आज कितने बच्चे ऐसे माता पिता के मन को दुखा रहे हैं, मुझे मैं कह रहा हूं। सो जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें आना है, व्यवहारिक जीवन में हमें आना है, और इसलिए जब हम कलीसिया के बारे में बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है, क्योंकि शिक्षा को सुनना है, समझना है, उनकी काउंसलिंग को स्वीकार करना है, लेना है और तब हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे वचन इस प्रकार से हैं, कहता है और वो कह रहा है उनके कार्य के कारण प्रेम पूर्वक अत्यंत सम्मान करो, जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हारे साथ किसी प्रकार से कार्य करते हैं उनके साथ। और ये कह रहा है सो पहली जिम्मेदारी हमें आगुओं के प्रति उनका आदर सम्मान करना है। जब सम्मान करते हैं तो झूठा दोष नहीं लगाते, अगर दोष किसी का सेवक पर है तो उसका भी संतान परमेश्वर के वचन में है। निकालिए पहला तीमोथियस उसका 5 अध्याय, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं 2 गुने आदर के योग समझे जाएं, विशेषकर जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं। एल्डर्स की जिम्मेदारी है प्रचार करने में कठिन परिश्रम करना, आज बैठे हाँ प्रभु दे देगा कल हम प्रचार कर देंगे प्रभु प्रभु ऐसा नहीं। कितना समय हम तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन को देने में सीखने में सिखाने में सुख सीखते हैं और सिखाते हैं कठिन परिश्रम करना है उसके बाद करते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दौड़ने वाले बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकारी है। किसी प्राचीन के विरुद्ध दो या तीन गवाहों के बिना कोई दोषारोपण ना सुन। कोई भी प्राचीन कोई भी एल्डर कोई भी सेवक जब तक दो या तीन गवाह ना हो आप उनकी ना सुनिए। दोष लगाने साधन है ये। हाँ अगर कोई गड़बड़ लगता है आप बातचीत करिए अगुओं के साथ शेयर करिए प्रार्थना कीजिए और उसको ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा अशांति मन मिटाओ ये नहीं। तरीके हैं बाइबल में सिद्धांत बताए गए समय कम है आगे में जाने के लिए मुश्किल है। जो लोग पाप करते रहते हैं उन सबको सामने डांट जो जिससे अन्य लोग भी पाप करने से दूर रहें सबके सामने डांट। ये अगो का अब ये भी मतलब नहीं कि अगो सबके सामने डांट लिखा है तो हम जो चाहे वो करें। पुराने नियम में लिखा था लिखा है क्या नाम से नेहमी ने क्या करा नेहमी ने तो बाल पकड़ के थप्पड़ मारे थे वो नहीं करा। हमें समझना है सावधान रहना हमें वो नहीं करना। अरे बाइबल पुराने नियम में कहा था नेहमी ने ऐसे कहा था मैं भी ऐसे करूँगा ये नहीं है साधन। हमें देखना परमेश्वर का वचन किस परिस्थिति में कैसे क्या सिखाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सम्मान करने को सीखना है। दूसरी चीज आगे जल्दी से पढ़ेंगे तब कहता है कलीसिया में एक दूसरे साथ संबंध विश्वासी किस प्रकार से वो कहता है अब यहां पर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों हम तुमसे आग्रह करते हैं विनती करते हैं विनय करते हैं क्या करते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि आलसियों को चेतावनी दो। हम बार बार इन दिनों में यही इस विषय को देख रहे हैं जब हमने तिमोथियस को देखा था पिछले दिनों में पिछले साल में जब शुरू करता बार बार मेरे प्रियो कलीसिया के परिवारों से मैं विनती करता हूं कि परिश्रम करने वाले बने। पतियों पिताओं जवान भाइयों मैं आपसे अनुरोध करता हूं परिश्रम करने से ढीले ना रहें ताकि आपका परिवार आर्थिक रीति से मजबूत हो जाए। ये नहीं कि परमेश्वर के भवन को छोड़ें अरे मैं घर की चिंता कर रहा हूँ मुझे पैसा कमाना है इसलिए मुझे मैं मीटिंग में नहीं आता मैं ये बाइबल स्टडी में नहीं आता मैं नहीं करता मैं दूसरे के यहाँ विजिट नहीं करता दूसरे की पैसा ज़रूरी है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम संबंधों को न रखें जो स्थान प्राथमिकता उसको भूल जाएं। हमें परमेश्वर को प्राथमिक स्थान देते हुए अपने परिवार की चिंता करते हुए परिश्रम करना है। मैं बार बार बोलता हूं अगर आप अपने परिवार में टाइम से नहीं आते कभी हो जाता है टाइम से नहीं आते तो आप परिवार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। पहला समर्पण हमें अपने परमेश्वर के प्रति दूसरा समर्पण हमारा है परिवार के प्रति तीसरा समर्पण सेवा के प्रति। पौलुस खुद कहता था जो अपने घर को ना संभाले कलीसिया को कैसे संभालेगा। और बार बार पिछले संडे में बोला था कि कलीसिया में आराधना आज पिछले बार जब बुधवार को हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि हमने कहा था पारिवारिक वेदी का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है इसीलिए हम डायरेक्टरी बना के देते हैं ताकि आप कलीसिया के सदस्यों के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और ये पारिवारिक वेदी में होता है। हमने शुरू से इस बात को सीखा है और अपने घर में बचपन से बच्चे हमारे जानते हैं कि हमारा एक समय था विजिट जाते थे मिनिस्ट्री करते सब कुछ करते थे लेकिन टाइम था उस टाइम में हम अपने आप कोई भी था भैया हम इतने जाने और हम ऐसे प्लानिंग करते थे। प्रभु कभी हो जाता है सेवा में कभी हो जाता है वो बात अलग है लेकिन अगर आदत बन गई है कि हमें घर वालों की चिंता नहीं करनी है या बच्चों की आदत है कि घर की चिंता नहीं करनी जहां चाह रहे जा रहे हैं जो टाइम में आ रहे गलत है। बच्चों को टाइम से अपने घर में जाना चाहिए परिवार को जाना चाहिए ये सीखना है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिली एंड लीडर्स। समय का संचालन करना धन का संचालन करना ये बहुत और यही चीज को हम आने वाले में मॉर्निंग क्लासेस में सीखेंगे। सो मेरी प्रार्थना है कि सचमुच कि इस वचन को समझिए हमें कैसे करना है। वो क्या कह रहा है कह रहा है आलसियों को चेतावनी दो कायरों को प्रोत्साहित करो। डर लग रहा है पड़ोस में हमारा विरोध करेंगे सुसमाचार हम कैसे बांटेंगे कलीसिया का नाम कैसे लेंगे ओ अच्छा ठीक है मेरा नाम सैमुएल है कोई सैमुएल ना जानने चाहे तो मैं सम्मू रख ले रहा हूँ। एक बार यहाँ पर एक पासरा प्रभु में चले गए उन्होंने कलीसिया में एक भाई आता था सैमुएल उसने अपना नाम सम्मू कर लिया। वो बहुत दिन से नहीं आ रहा था वो फैक्ट्री में पहुँच गए फैक्ट्री में गार्ड से पूछा कि भैया यहाँ पर सम्मू नाम का कोई है कि नहीं 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 सॉरी सैमुएल नाम का कोई है कि सैमुएल का कोई नहीं है सैमुएल नाम का कोई नहीं। खैर कूदते पासते पासते पता चला कि उसने अपना नाम यहाँ सम्मू कर रखा है तो पता चला सम्मू नाम अच्छा सम्मू निकल गया। अरे सैमुएल तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता तुमने नाम समूह कर रखा है। अरे पादरी साहब, अगर इनको मालूम चल जाएगा मेरा सैमुअल है, ये मुझे फैक्ट्री से निकाल देंगे। ये बहर है, बहर, बहर। ये बुद्धिमानिता नहीं है। हमें परमेश्वर की साक्षी से डरना नहीं है। और परिस्थिति आ रही है, असली परख आने वाली है, जो मसीह के पीछे चलने वाले खड़े हो जाएंगे। और प्रभु हो सकता है प्रभु इन सारी परिस्थितियों को बदल रहा है, ठीक है, हम सरकार से लड़ते हैं, केस करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, हमें तैयार रहना है। अगर कल ऐसा द्वार बंद हो जाए, हमें तैयार रहना है, क्योंकि हम किसके हैं? हम उस जीवित परमेश्वर के हैं जो एक दिन हमें आएगा और हमें ले जाएगा, अपने साथ रखेगा। प्रार्थना ध्यान रखिए। सो यहां पर वो कहता है कि कैरों को हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, निर्बलों की सहायता करो, जो विश्वास में निर्बल है, शायद बच्चों के समान है, हमें उनकी सहायता करना है, उनको प्रोत्साहित करना, उनके साथ प्रार्थना करनी, उनको शिक्षा देनी है, उनको प्रतिज्ञा देनी है और उनको उठाना है। हमें कलीसिया में बहुत सारे नए हैं, इवन औसता 4-5 साल कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास कई सारी चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, हमें उनके साथ ऐसे, इसीलिए तो एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने में समय व्यतीत करना है। बहनों को कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में किसी एक बहन के साथ, किसी एक बहन के साथ टाइम लेकर प्रार्थना जरूर करें। बच्चियां तो करती हैं, लेकिन बड़ी बहनों के बीच में होना चाहिए, आसपास के साथ, ये जरूर है। हम एक दूसरे को उठा रहे हैं, मेहमान कर रहे हैं, ये करना है, भाइयों करना है, जवानों करना है, ये कलीसिया में। तब कहता है सबके साथ सहनशीलता दिखाओ। बहुत सारी चीजों को हमें सहना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है सहनशीलता। सही है, हम कलीसिया में परिवार में अगर ये ना हो तो परिवार नहीं चल पाएगा। कलीसिया बड़ा परिवार है, और अगर ये ना हो तो कलीसिया नहीं बढ़ पाएगी, ये चीज है। और जब ये सारी चीज होती है तो कलीसिया एकजुट होकर रहती है और बढ़ती है, और परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य फैलता चला आता है, बढ़ता चला आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो पिछले सालों में परमेश्वर ने इस कलीसिया को बढ़ाते चला गया। हमारी दुआ ये, हमारी प्रार्थना ये, आने वाले दिनों और भी बढ़ सके, और भी हो सके, लेकिन हमें ये सब कुछ करना है, ये व्यवहारिक चीजें हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको कम से कम इस साल किसी एक नए परिवार को अपने साथ बुलाना है, ताकि उनके साथ संगति कर सके, जान सके। जरूर आप बिजी हैं, व्यस्त हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन आप कोई ना कोई कैलेंडर बना के, योजना बना के, परिवार बात करके मिल सकते हैं, और ये आशीष का कारण होगा, ये एक दूसरे के प्रोत्साहन का कारण होगा। शायद जिससे अभी तक आपने समय नहीं दिया, जिसको शायद अभी तक आपने ज़्यादा नहीं जाना, कितने अन्य जाति परिवार से प्रभु में आए, उनके सामने उनको बढ़ने की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है, उनकी निराशाएं, उनका संघर्ष। पत्नी प्रभु में आ गई तो पति विरोध करता है, पति प्रभु में आ गए तो पत्नी विरोध करती है। आप जानते हैं कलीसिया में से परिवार हैं, हमें क्या करना है, उनको उठाना है, उनके संग साथ संगति करनी है, उनके लिए प्रार्थना करना है, वो निर्बल है तो उनको विश्वास में मिलकर, ये कलीसिया का काम है मेरे प्रियो, सच है। और कलीसिया सेवकों के साथ मिलकर इस काम में आगे बढ़ सकती है। तब उसके बाद एक दूसरे साथ, तब वो तीसरे वो कहता है, ध्यान रखो कोई बुराई के बदले बुराई ना करे, परंतु सर्वदा एक दूसरे साथ लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहो। हमारी प्रयत्नशीलता, तब आगे चल करके हम देखते हैं, वो कह रहा है प्रार्थना में सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में विजय प्रदान करती है, निराश व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। है अय्यूब में कहता है कि निराश व्यक्ति, अय्यूब की स्थिति ऐसी हो गई थी। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, निर्बल लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, जैसे मैंने इस बहन का उदाहरण दिया। अब इस बहन के लिए हमें प्रार्थना करनी है, पूछना है, बात करना है, प्रार्थना की उसका बच्चा रिलीज हो जाए, जिस भाई को हमने वकील को काम दिया है वो कार्य कर सके और उसका बच्चा आ जाए। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ही है, ऐसे हमें करना है। ये कलीसिया है मेरे प्रियो, कलीसिया एक परिवार है, परिवार में कलीसिया एक देह है, देह के विभिन्न अंग हैं, अगर एक चुई कांटा लगता है पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और हमें इस प्रकार से करना है। सुशीला हमारे बीच में है, कितनी बहन ऐसे, भाई लोग हमारे बीच में है, उनके परिवार में प्रभु धन्यवाद, आज उनका बेटा उनको छोड़ के गया, शायद वो एक दिन कलीसिया के अंदर आ जाए, कितनी अच्छी बात होगी। हम लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को, जानिए यही तो सेवा है, इसी तो कलीसिया बढ़ेगी, यही तो परिवार बनेगा मेरे प्रियो। केवल संडे अटेंड करना काफी नहीं है, हम एक दूसरे के दुख को समझ सकें, प्रार्थना कर सकें। घर में प्रार्थना आप हर एक के लिए कर सकते हैं। हमारा भाई शर्मा परिवार कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन कोई भी कई बार गाड़ी नहीं मिलती तो पैदल वो वहां से आते हैं, सरस्वती से पैदल आते हैं। कितनी उम्र है उनकी, सबसे ज्यादा मेरे से भी बड़े हैं वो आयु में, लेकिन वो कितनी बार आप उनको गले मिल करके उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये हमें करना है, समझ रहे, उनको प्रोत्साहित करना है, कलीसिया का काम है। और इस तरीके से हम एक दूसरे का निर्माण करते हैं। हमें परमेश्वर ने कलीसिया में जोड़ा है कि हम एक दूसरे का निर्माण करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए चिंता करें, प्रार्थना करें, कुछ नहीं कर सकते, दो मिनट बात करके संगति, इसीलिए हम चाय पे संगति करते हैं बाहर निकल करके, ताकि हम एक दूसरे प्रोत्साहित कर सके। सो ये वो कह रहा है कि हम ये करते हैं, वो कह रहा है निरंतर प्रार्थना सर्वदा आनंद की तरह, मतलब ये समस्या आती है, कठिनाइयां आती हैं, आनंद देने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य हैं, कई बार निराश होते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको उस प्रोत्साहित करता है कि हम आनंदित रह सके। प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर प्राप्त हो, उसकी शांति मेरे और आपके जीवन प्राप्त हो, कि वो हमें आनंदित रख सके, उन कठिनाइयों में, परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में हम आनंदित हो सके, प्रभु सहायता करें। तो ये कह रहा है। तब उसके बाद तीसरी बात क्या कहता है, 18 पद से लेकर के तीसरी बात कहता है, कलीसिया में पवित्र आत्मा के साथ संबंध, हमारा संबंध परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है, और पवित्रता का, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे बड़ा काम, इससे पहले कलीसिया स्थापित हो, इससे पहले वहां पर पवित्र आत्मा डेला जाए, सब कुछ परमेश्वर ने अपने शिष्यों से कह दिया था कि पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें कायल करेगा, कन्विक्ट करना है, पाप से कायल करना है, ताकि आप पाप से कायल होकर के, पश्चाताप करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करा है। लेकिन यदि आपने अभी तक प्रभु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करा, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करा है, परमेश्वर ने सृष्टि की, लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य ने पाप किया, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, पाप की मजदूर तो मृत्यु है। और यदि आपने विश्वास नहीं किया और पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक दिन हमें परमेश्वर सामने खड़ा होना पड़ेगा और हम दंडित होंगे, और हमें नहीं मालूम कब तक हम इस संसार में हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उसके प्रेम के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने मुझे और आपको अवसर दिया है कि हम पश्चाताप कर सकें, क्षमा मांग सकें, प्रभु से कह सकें, प्रभु मेरे अपराधों को, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, और अपने जीवन को तन मन रीति से उसके आत्मा में समर्पण कर सकें। फिर हम कहें, प्रभु मैंने आपके वचन पर विश्वास किया है, आपके बलिदान पर विश्वास किया, धन्यवाद आप मेरे पाप के लिए मारे गए, मेरे पाप के लिए आप गाड़े गए, जी उठे और अजीवित परमेश्वर है, और इसलिए मैं पश्चाताप करके अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरे जीवन को ले लीजिए और मुझे उस पाप से क्षमा का आनंद प्रदान कीजिए, और मैं आपके साथ उस उद्धार में आगे बढ़ सकूँ। मेरे प्रियो, यदि आपने नहीं किया तो आप अवसर को मत खोइए। परमेश्वर का वचन लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। देखो आज ये उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, शायद ये दिन आपके लिए आज हो कि आज आप उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। सिर्फ इस बात पर मत रहिए, आनंदित रहिए कि नहीं मैंने वचन सुना है, मैं जाता हूँ करता हूँ, लेकिन निर्णय लीजिए। तो वो कहता है पवित्र आत्मा काम, सबसे पहला काम परमेश्वर के जीवन दया से मुझे और आपको पवित्र बनाना है, सामर्थ प्रदान करना है, अधिकार देना है। वो कह रहा है 18 पद में, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो। ये पवित्र आत्मा करता है, जब वो मेरे और के जीवन में कठिन परिस्थिति में, समस्या में, कई सारे यूट्यूब में चीज आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब में अच्छी भी नहीं आती, साधारण नाम लोगों से जो कि बस उनको देवता बना देते हैं लोग, कई बार इस यूट्यूब के कारण परमेश्वर को कम पीछे जा रहे हैं, लेकिन लोगों के पीछे ज्यादा जा रहे हैं। और मुझे और आपको साधारण आना है, यूट्यूब अच्छा है, लेकिन उन संदेशों को प्राप्त करिए जो आपको यीशु के पीछे चलना सिखाए। आप मनुष्य के पुजारी मत बनिए, सावधान रहिए इन अंतिम दिनों में, और बढ़ता चला जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है इन अंतिम दिनों में और ऐसा बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुबह से लेकर शाम तक, मैंने कविता सुनाता हूँ जवान बच्चों को मोबाइल की, अभी कैंप आ फिर सुनाऊंगा। सो वो क्या है, वही है, सुबह उठते साथ पहले उसको पूछते हैं, उसको मत पूछिए, उसको मत पूछिए, बाइबल के पास जाइए, परमेश्वर के वचन के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए, वो करिए। पवित्र आत्मा का काम ये काम है, हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बनाता है उसका वचन, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, जब आप पाप में जीवन व्यतीत करेंगे, जब हट्टीपन का जीवन व्यतीत करेंगे, पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, कालता आपके जीवन में आएगी और सब कुछ होने के बाद फिर भी आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, फिर भी आप उसको लेके चलते रहेंगे, तो ये आत्मा को बुझाना है। लेकिन अगर पाप की कालता आपके जीवन में है, भाई भाई से संबंध अच्छा नहीं है, आपने क्षमा नहीं मांगी है, परिवार में संबंध अच्छे नहीं है, क्षमा नहीं मांगी, बच्चों ने कोई काम ऐसा करा है, माता पिता से क्षमा नहीं मांगी, छिप के काम कर रहे हैं, और आप प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, आपको आत्मा को नहीं बुझाना है। परमेश्वर के आत्मा को काम करने देना है जो आपको खुलासे में ले जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें ज्योति में चलना सिखाता है। हम छुप के कोई काम नहीं करेंगे, ज्योति में चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और सावधान रहिए इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन क्या सता। तब आगे चल के कहता है, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। मैंने पिछली बार बताया था भविष्यवाणी का मतलब क्या है। परमेश्वर का वचन आपके सामने भविष्यवाणी के रूप में आता है। वो समय जैसे परमेश्वर पहले भविष्य को यूज करा, वो नहीं है आज। इसको हमें ध्यान देना है। ये हमारे अंदर मन में, मस्तिष्क में, विचारों में, भावना में इसको जमना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर का वचन मेरे लिए, मेरे मार्ग के लिए उजारा और मेरे पथ के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन क्या ही धन है जो रात दिन उस वचन पर मनन करता है। मेरे प्रियो, इसको हमें याद रखना है, इसके अनुसार हमें चलना है, ये हमें करना है। और तब उसके बाद आगे चल के कहता है, सब बातों को सावधानी से परखो जो अच्छी है, दृढ़ता पूर्वक थामे रहो। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के वचन में निश्चयता है, एश्योरेंस है, प्रोमिसेस है, एश्योरेंस है। परमेश्वर के वचन में वार्निंग्स है, चेतावनी है। परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको देखे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर के हैं, उनको सावधानी से मुझे और आपको पकड़ने रहना है। वो हमारे जीवन की दृढ़ता का कारण है। संसार नहीं, संसार की रीति विधि नहीं, संसार के तरीके नहीं, वो। और तब परमेश्वर मेरे और आपको जीवन में आशीष देगा। और इसके साथ वो कहता है, सब प्रकार की बुराई से बच रहो। तो प्रभु सहायता करे कि कलीसिया हमारी, ये सियोन कलीसिया जो आज हमने 3-4 दिन से लगातार सीरीज पे हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, हम 2020 में अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, कलीसिया जीवन में और अधिक दृढ़ हो सकें और अधिक मजबूत हो सकें, ये मेरे और आपकी इच्छा होनी चाहिए। और मैंने पहले आपसे कहा था, सच में ये कलीसिया मजबूत होने वाली कलीसिया है। पाप से हम खिलवाड़ ना करें, पाप से हम संबंध ना करें। जब पाप से कोई करता है, कोई दो करता है, मेरे को परेशानी होती है, मेरे को बहुत परेशानी होती है। मेरे प्रियो, हमें ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना का, हमें सत्यनिष्ठा का जीवन व्यतीत करना है, सच्चाई का निष्ठा जीवन व्यतीत करना है। एक दूसरी चिंता करें, सेवक कलीसिया में, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की दृढ़ता के लिए और आपके मेरे जीवन की भलाई के लिए और बढ़ोतरी के लिए बनाए गए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। चिंता करना, प्रार्थना करना, आपकी सुधि लेना, आपके साथ होना, ये करना है। सो प्रभु सहायता करें। जैसे मैंने कहा कि आने वाले हफ्ते में हम इन सब भाइयों का पूरा डिटेल नोटिस बोर्ड पर डाल देंगे। कोई भी बात हो ये, जरूर किसी को आप इन्फॉर्म करिए। और हम में इन भाइयों से भी अनुरोध करेंगे, जब कोई इन्फॉर्म करता है उसको गंभीरता से लें और दूसरे तो बताएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है दूसरे लोगों कर सकें, और ताकि हम एक दूसरे को साथ संबंध और अधिक दृढ़ हो सकें। सो परमेश्वर की सहायता से हम इस 2020 में विश्वास में, कलीसिया का सम्मान करने में, परमेश्वर के वचन का सम्मान करने में और अधिक आगे बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। प्रश्न है, क्या ये समर्पण मेरा है, क्या ये समर्पण आपका है? जब तक मेरा और आपका समर्पण ना हो, और इसीलिए परमेश्वर का वचन ही कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली और बहुत इच्छा अनुभव से मालूम करते चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर सहायता करें। रोमियो 12:1-2, ये मेरा और आपका समर्पण और भी दृढ़ हो, ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।